साहित्य में तमिल भाषा की प्रतिष्ठा। तमिल भाषा संस्कृत प्राकृत के अखिल भारतीय भाषा तंत्र से बाहर नहीं थी। कन्नड़, तेलुगु और मलयालम जैसी द्रविड़ भाषाएं इस तंत्र के भीतर थी, यह तो बहुत स्पष्ट है। वैदिक पौराणिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के केंद्र तमिलनाडु में भी स्थापित हुए थे। वहाँ भी संस्कृत प्राकृत का अध्ययन किया जाता था। इस अखिल भारतीय तंत्र के भीतर रहते हुए तमिल भाषा भारत की देशी भाषाओं में सर्वप्रथम साहित्य का माध्यम बनी। इसके महत्वपूर्ण सामाजिक कारण हैं। तमिलनाडु में व्यापार का विकास उस प्राचीन काल में होता है जिस काल में अखिल भारतीय स्तर पर सामंती व्यवस्था अभी सुदृढ़ हो रही है। तमिलनाडु इस व्यवस्था के केंद्रों से सर्वाधिक दूर है, इसलिए इस व्यवस्था के वहाँ तक पहुँचने और सुदृढ़ होने में कुछ अधिक समय भी लगा। तमिलनाडु के निवासी नौका और जहाज बनाने में कुशल थे। समुद्र तटवर्ती भूमि पर उन्होंने अनेक नगर स्थापित किए थे। ये नगर जल मार्गों से होने वाले व्यापार के भी केंद्र थे। वे तमिल संस्कृति के केंद्र भी बने। सामंती व्यवस्था अभी पूर्णतः सुदृढ़ न हुई थी। उसके गर्भ में पण्य वस्तुओं के उत्पादन और उनके विनिमय का विकास हुआ। इससे एक ओर धार्मिक कट्टरता में कमी हुई, दूसरी ओर लोक भाषा को साहित्य का माध्यम बनाने में सुविधा हुई। पृष्ठ संख्या 91। विद्या भवन बम्बई से प्रकाशित इतिहास ग्रंथ द एज ऑफ इम्पीरियल यूनिटी में एस कृष्ण स्वामी अयंगार ने लिखा है, ईसाई संघ शुरू होने से तुरंत पहले और बाद की शताब्दियों में व्यापार संबंधी कार्यवाही दक्षिण भारत में बहुत बड़ी चढ़ी थी और इसका काफी अंश विदेश व्यापार का था। रोमन साम्राज्य से खेती और उद्योग धंधों की वस्तुओं और मसालों का व्यापार तेजी पर था। इसी के अनुरूप पूरब के देशों से व्यापार जोरों पर था। इसका प्रसार कत्तीगर तक था, जो दक्षिण चीन की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थी। समुद्री यात्राएं लंबी होती थी और खतरनाक थी। बाहर के इन देशों तथा भारत के विभिन्न भागों से संचार व्यवस्था नियमित और द्रुत गति से चालू रहती थी। ऐसा प्रतीत होता है इसके बारे में हम तमिल साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के लेखों से निरंतर नए प्रमाण जुटाते रह सकते हैं। इस समय या इससे कुछ पहले से यूनान में इसी तरह का विकास हो रहा था। प्राचीन काल में जिन जातियों को समुद्री यात्रा के लिए अधिक सुविधाएं प्राप्त थी और जिन्होंने इन सुविधाओं का उपयोग किया, उन्होंने न केवल व्यापार का विकास किया वरन अन्य जातियों की अपेक्षा अपनी भाषा और साहित्य में भी प्रगति की। यूनान की आर्थिक प्रगति के बारे में प्राचीन की भाषा और प्राचीन ग्रीक भाषा और समाज के विशेषज्ञ जॉर्ज टॉमसन ने लिखा है। सातवीं और छठी ईसा पूर्व शताब्दियों में यूनान में व्यापार का प्रसार शुरू हुआ। आज के हिसाब से यह प्रसार छोटा था, फिर भी प्राचीन समाज के विकास में यह एक नई मंजिल था। इसकी विशेषता भी थी व्यापारी वर्ग का अभ्युदय। इस वर्ग ने कई नगरों में राज्य सत्ता पर अधिकार प्राप्त कर लिया और उसने जनतांत्रिक संविधान कायम किया। द फर्स्ट फिलोसफर्स लंदन 1955 पृष्ठ 194। इसी प्रसंग में टॉमसन ने मुद्रा के चलन का महत्व बताया और लिखा है कि इससे सिद्ध होता है कि पण्य वस्तुओं का उत्पादन होने लगा था और यह उत्पादन सामाजिक संबंधों में प्रविष्ट होकर पुरानी परिस्थितियों को भंग कर रहा था। टॉमसन ने इस परिवर्तन को क्रांति की संज्ञा दी है और उसकी गुरुता पर जोर दिया है। यूनान की प्राचीन सभ्यता सामंती सभ्यता थी। दास प्रथा के आधार पर यहाँ पण्य वस्तुओं का उत्पादन हुआ, व्यापार का विकास हुआ। इससे सामंती व्यवस्था शिथिल हुई। जिस जनपद का मुख्य नगर एथेंस था, उसकी भाषा साहित्य में प्रतिष्ठित हुई। यूनान की यह प्राचीन जनपदीय भाषा आधुनिक ग्रीक भाषा से काफी मिलती जुलती है। प्राचीन मदुरई नगर जिस जनपद का केंद्र था, उसकी भाषा साहित्य का माध्यम बनी। यह प्राचीन जनपदीय भाषा पृष्ठ संख्या 92 आधुनिक तमिल भाषा से बहुत मिलती जुलती है। जो महत्व यूनान के लिए एथेंस नगर का है, वह महत्व तमिलनाडु के लिए मदुरई नगर का है। कहते हैं कि पहला मदुरई नगर जलमग्न हो गया। ऐसा होने पर भी दूसरे मदुरई नगर का इतिहास भी काफी लंबा है। ईसा पूर्व शताब्दियों से लेकर अब तक यह नगर तमिल भाषा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। तमिल भाषा और साहित्य के अविच्छिन्न इतिहास का यह बहुत बड़ा कारण है।